नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैट रिडली की द रैशनल ऑप्टिमिस्ट, हाउ प्रॉस्पेरिटी इवॉल्व्स, अर्थशास्त्र, इतिहास और लोकप्रिय विज्ञान के मेल पर लिखी गई पुस्तक है। इसका केंद्रीय उद्देश्य उस व्यापक धारणा को चुनौती देना है कि मानवता का भविष्य अनिवार्य रूप से पतन, संसाधन संकट और सामाजिक विघटन की ओर बढ़ रहा है। रिडली का तर्क है कि दीर्घकालिक आंकड़ों में जीवन प्रत्याशा, पोषण, स्वास्थ्य, ज्ञान, संचार और भौतिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है। वे इस प्रगति का मुख्य कारण किसी अकेले प्रतिभाशाली व्यक्ति, सरकार या प्राकृतिक संसाधन को नहीं, बल्कि विनिमय, श्रम, विभाजन और विचारों के संयोजन को मानते हैं। पुस्तक मानव सभ्यता को एक ऐसी सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया के रूप में देखती है जिसमें लोग एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए विशेषज्ञता विकसित करते हैं और व्यापार करते हैं। फिर भी यह केवल प्रगति का उत्सव नहीं बल्कि एक विवादास्पद मुक्त बाजार समर्थक व्याख्या भी है। इसलिए इसे पढ़ते समय इसके आशावादी निष्कर्षों, पर्यावरणीय जोखिमों और असमानता पर सीमित ध्यान, तीनों को साथ रखकर समझना उपयोगी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, विनिमय और श्रम विभाजन को समृद्धि का मूल इंजन मानना। रिडली के अनुसार मानव समृद्धि का निर्णायक स्रोत केवल बुद्धिमत्ता या मेहनत नहीं बल्कि विनिमय की क्षमता है। जब लोग वस्तुओं, सेवाओं और कौशलों का आदान प्रदान करते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति सीमित कामों में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। यह श्रम विभाजन उत्पादकता बढ़ाता है क्योंकि कोई व्यक्ति भोजन उगाने, औजार बनाने, उपचार करने और घर बनाने में एक साथ दक्ष होने का प्रयास नहीं करता। वह एक काम में बेहतर होता है और अपनी जरूरतों के लिए दूसरों की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। रिडली इस परस्पर निर्भरता को कमजोरी नहीं, आधुनिक समाज की शक्ति मानते हैं। उनके तर्क में बाजार का महत्व केवल कीमत तय करने तक सीमित नहीं है। बाजार बिखरे हुए ज्ञान, स्थानीय जरूरतों और व्यक्तिगत प्रयोगों को जोड़ने की व्यवस्था भी है। इसीलिए वे समृद्धि को प्राकृतिक संसाधनों के स्थिर भंडार से अधिक संसाधनों के नए उपयोग खोजने की मानवीय क्षमता से जोड़ते हैं। पुस्तक का यह पक्ष बताता है कि व्यापार का लाभ केवल वस्तु पाने में नहीं बल्कि अधिक जटिल सहयोग संभव बनाने में है। हालांकि इस तर्क की सीमा भी है। विनिमय तभी व्यापक कल्याण देता है जब नियम निष्पक्ष हो, भागीदारी संभव हो और लाभ तथा जोखिम अत्यधिक असमान रूप से वितरित न हो। दूसरा, विचारों के संयोजन से बनती सामूहिक बुद्धि। पुस्तक का सबसे यादगार विचार यह है कि नए विचार अक्सर अकेले पैदा नहीं होते, वे पुराने विचारों के नए संयोजन से बनते हैं। रिडली इसे विचारों के परस्पर मिलन की उपमा से समझाते हैं। भाषा, व्यापारिक संपर्क, शहर, संस्थाएं और संचार माध्यम लोगों को अपने अनुभव तथा तकनीक साझा करने देते हैं। इस साझा करने से एक व्यक्ति का उपयोगी समाधान दूसरे व्यक्ति के काम आता है, फिर उसमें सुधार होता है और वह किसी तीसरी समस्या पर लागू हो सकता है। इस अर्थ में नवाचार संचयी है। आज की जटिल तकनीकें असंख्य पूर्ववर्ती खोजों, कौशलों और आपूर्ति संबंधों पर निर्भर हैं। रिडली इसीलिए उस धारणा का विरोध करते हैं कि महान आविष्कार केवल अलग थलग प्रतिभाओं की देन होते हैं। उनके लिए सभ्यता की वास्तविक उपलब्धि सामूहिक बुद्धि है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, फिर भी सहयोगी व्यवस्था बड़े परिणाम पैदा करती है। यह दृष्टि खुले संपर्क और ज्ञान के प्रसार के पक्ष में मजबूत आधार देती है। साथ ही यह याद दिलाती है कि नवाचार के लिए केवल स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं होती। शिक्षा, सार्वजनिक ज्ञान, कानूनी भरोसा और विभिन्न समूहों के बीच संवाद भी जरूरी है। पुस्तक इन सहायक संस्थागत शर्तों को स्वीकार करती है पर उनका विश्लेषण व्यापार की केंद्रीय भूमिका की तुलना में कम विस्तार से करती है। तीसरा, विश्वास, नियम और अपरिचित लोगों के बीच सहयोग। रिडली के तर्क में व्यापार तभी फलता है जब लोगों में पर्याप्त विश्वास हो। परिवार या छोटे समुदाय में सहयोग निजी पहचान और रिश्तों से चल सकता है, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेन देन अपरिचित लोगों के बीच होते हैं। वहां भरोसा इस अपेक्षा पर टिका होता है कि भुगतान होगा, माल तय गुणवत्ता का होगा और विवाद की स्थिति में कोई नियम लागू होगा। इसलिए पुस्तक समृद्धि को केवल स्वार्थ की कहानी नहीं बनाती, यह दिखाती है कि स्वार्थ को उपयोगी सहयोग में बदलने के लिए विश्वसनीय व्यवहार और संस्थाएं चाहिए। व्यापारी, उत्पादक और ग्राहक बार बार लेन देन करते हैं जिससे प्रतिष्ठा का महत्व बढ़ता है। कानून, संपत्ति अधिकार और अनुबंध जैसी व्यवस्थाएं इस प्रक्रिया को अधिक बड़े पैमाने पर संभव बनाती हैं। रिडली का व्यापक निष्कर्ष है कि जब विश्वास का दायरा बढ़ता है तब विशेषज्ञता और विनिमय का दायरा भी बढ़ता है। यह विचार उनके आशावाद की एक महत्वपूर्ण शर्त स्पष्ट करता है। केवल बाजार खोल देना पर्याप्त नहीं है, भरोसेमंद संस्थाओं का निर्माण भी आवश्यक है। आलोचक यहाँ एक उचित प्रश्न उठाते हैं कि वित्तीय संकटों, शक्तिशाली संस्थाओं और असमान सौदेबाजी की स्थितियों में विश्वास कैसे टूटता है।
पुस्तक इस समस्या को पूरी तरह केंद्र में नहीं रखती, लेकिन उसका अपना ढांचा यह समझने में उपयोगी है कि भरोसा खोने पर आर्थिक सहयोग कितना नाजुक हो सकता है।
चौथा, दीर्घकालिक प्रगति के आंकड़े और निराशावाद की आलोचना। द रैशनल ऑप्टिमिस्ट का स्वर जानबूझकर प्रचलित निराशावाद के विरुद्ध है।
रिडली लंबे ऐतिहासिक काल में मानव जीवन की स्थितियों की तुलना करते हैं और कहते हैं कि औसत व्यक्ति को आज भोजन, स्वच्छता, चिकित्सा, ऊर्जा, यात्रा, संचार और जानकारी तक पहले से कहीं अधिक पहुंच है। उनका महत्वपूर्ण बिंदु यह नहीं कि हर समाज में हर व्यक्ति की स्थिति अच्छी है, बल्कि यह है कि इतिहास की तुलना में सामान्य जीवन स्तर में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, विशेषकर आधुनिक काल में। वे यह भी बताते हैं कि समाचार और सार्वजनिक बहस अक्सर तात्कालिक आपदाओं, युद्धों और खतरों पर केंद्रित रहती है, जबकि धीमे लेकिन व्यापक सुधार कम दिखाई देते हैं। यह मानसिक प्रवृत्ति भविष्य के बारे में अत्यधिक अंधकारपूर्ण निष्कर्ष दे सकती है।
रिडली का आशावाद इसलिए अंधी सकारात्मकता होने का दावा नहीं करता, बल्कि प्रवृत्तियों के आधार पर भविष्य का आकलन करने की कोशिश करता है।
फिर भी आलोचना यह है कि औसत प्रगति स्थानीय पीड़ा को समाप्त नहीं करती। युद्ध, बेरोजगारी, विस्थापन या प्राकृतिक आपदा झेल रहे व्यक्ति के लिए वैश्विक औसत सीमित सांत्वना है।
पुस्तक को सबसे अच्छी तरह तब पढ़ा जा सकता है जब दीर्घकालिक सुधार के प्रमाण को स्वीकार करते हुए वितरण, सुरक्षा और तात्कालिक संकटों की अलग नैतिक गंभीरता भी मानी जाए।
अंत में पर्यावरण, जनसंख्या और जोखिमों पर आशावाद की विवादित सीमा। रिडली का मानना है कि मानव समाज समस्याओं के सामने निष्क्रिय नहीं रहता।
बढ़ती कीमतें, कमी और नई जरूरतें लोगों को विकल्प खोजने, दक्षता बढ़ाने और नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं।
इसी आधार पर वे जनसंख्या, संसाधन उपलब्धता और पर्यावरणीय दबावों पर अपेक्षाकृत आशावादी रुख रखते हैं।
उनका तर्क है कि समृद्ध समाज कम संसाधनों में अधिक उत्पादन कर सकते हैं, स्वच्छ तकनीक विकसित कर सकते हैं और समय के साथ जनसंख्या वृद्धि की दर भी घट सकती है।
यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरणीय चर्चा में नवाचार और अनुकूलन को जगह देता है।
यह मानने से रोकता है कि संसाधन सीमित होने का अर्थ अनिवार्य सामाजिक पतन है, लेकिन पुस्तक का यही हिस्सा सबसे अधिक विवाद पैदा करता है।
आलोचकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास और प्रदूषण जैसे जोखिमों को केवल भविष्य की तकनीकी क्षमता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
इनके नुकसान असमान रूप से पड़ते हैं, कुछ क्षति वापस नहीं ली जा सकती और बाजार संकेत कई बार बहुत देर से काम करते हैं।
इसलिए रिडली का तर्क उपयोगी प्रश्न उठाता है कि समाधान में नवाचार की भूमिका क्या होगी, पर यह अपने आप में पर्याप्त नीति ढांचा नहीं देता।
सावधानी, वैज्ञानिक आकलन, सार्वजनिक नियम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी समान महत्व देना पड़ता है।
निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अर्थशास्त्र, मानव इतिहास, तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण के संबंध को एक व्यापक तर्क के रूप में समझना चाहते हैं।
नीति, उद्यम, विज्ञान या सामाजिक विकास में रुचि रखने वाले पाठक इससे यह बौद्धिक लाभ ले सकते हैं कि समृद्धि को केवल धन के संचय के रूप में नहीं, बल्कि सहयोग की बढ़ती क्षमता के रूप में देखें।
वर्गेस, रिडली प्रभावी ढंग से समझाते हैं कि रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं के पीछे विशाल श्रम विभाजन, विशेषज्ञ ज्ञान और अनगिनत विनिमय संबंध काम करते हैं।
यही दृष्टि पुस्तक को सामान्य प्रगति कथाओं से अलग बनाती है। बहुत सी पुस्तकें तकनीक, संस्थाओं या महान नेताओं को परिवर्तन का प्रमुख कारण बताती हैं,
जबकि रिडली विनिमय द्वारा निर्मित सामूहिक बुद्धि को केंद्र में रखते हैं।
उनका लेखन व्यापक ऐतिहासिक पैमाना और स्पष्ट प्रतिपक्ष देता है, इसलिए पुस्तक बहस को उकसाती है। फिर भी इसे अंतिम सत्य की तरह नहीं पढ़ना चाहिए।
असमानता, सत्ता के केंद्रीकरण, वित्तीय अस्थिरता और पर्यावरणीय जोखिमों पर इसके निष्कर्षों को अन्य दृष्टिकोणों से परखना जरूरी है।
सबसे संतुलित पाठ यह होगा कि पुस्तक के दीर्घकालिक प्रगति संबंधी प्रमाण और नवाचार पर उसके भरोसे को गंभीरता से लिया जाए,
लेकिन यह भी पूछा जाए कि प्रगति के लाभ किसे मिलते हैं, लागत कौन उठाता है
और किन सार्वजनिक संस्थाओं से खुला विनिमय अधिक न्यायपूर्ण तथा टिकाऊ बन सकता है।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैट रिडली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें।
फिर मिलते हैं।